जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पाचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
उपदेश प्रथम देकर कहा कबीर साहब ने कि अब अब्राहिम तू वापस जा, अब बेटा तू राज कर ले, अब उस राज को तू मेरा समझकर करना, अपना मत करना, तुझे ना चिंता बनेगी ना ना कोई समस्या आवेगी और भक्ति कर सकता। मेरा समझकर करना, तू अपना समझकर मत करना। नुकसान हो तो समझा समझना मालिक का, मैं तो उसका नौकर हूं, पर नुकसान ना होए ऐसे सती थी और सावधान रहना, लापरवाही भी मालिक के लिए हानि होती है। अब्राहिम ने कहा कि मालिक आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, आपने झटका ऐसा बढ़िया दे दिया दाता, अब दास कुछ नहीं कर सकता, केवल आपके गुण गाऊंगा, आपके चरणों में रहूंगा और बच्चे सियाने हो गए अपना राज संभाल लेंगे। कबीर साहब ने कहा ठीक है तो अपना भजन करो। राजा को फिर भूख लगी श्याम को, क्योंकि वो दोनों की दोनों जूते वही डाल आया था। जो प्रभु इतना साथ है, हर दम हमारे पास है, तो छोड़ इस क्यों माया के चक्कर में रहा। भूख लगी श्याम को, श्याम तो बिता दी सुबह, जोर की भूख लगी। ऊपर से आसमान से बहुत सुंदर चांदी की थाली में, चांदी की कटोरियों में और ऐसे ही नाना प्रकार के हलवा, कचौरी, पकौड़ी, ना जाने खीर है, क्या सुंदर भरा हुआ थाल पर अब्राहिम के सामने आके रुक गया, रखा गया। अब्राहिम ने जो ही उसका ऊपर का कपड़ा उठाया और देखा, उसमें तो नौ प्रकार के व्यंजन की खीर, न्यारी, हलवा अलग से है, कचौड़ी, पकौड़ी, पूरी, मंडेर, बढ़िया बढ़िया है। तो उसने हाथ जोड़ दिया, मालिक हे दाता या लीला बंद करो, मालिक इसी बीमारी से तो पीछा छुटवा के आया हूं, अपने दास को सूखी रोटी दे दो दादा। आकाशवाणी हुई कि अब्राहिम अब तू निर्मल हो चुका है, तुझे ज्ञान हो गया, अब तेरे ऊपर ये माया का असर नहीं, वैसे खा ले पुत्र ये रोटी, आज तो खा ले और कल से सूखी रोटी आ जाएगी। कहा दाता अब ये नहीं खाई जाती, इसको तो मैं त्याग कर आया हूं, आपकी रजा है, आप ही ने ये रजा बख्शी है। तो कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं पुत्र, आज तो खा लो। तो अब्राहिम ने एक रोटी खाई, फिर वो थाली अपने आप वहां से अंतर्ध्यान हो गई और कहा दाता कल ना बेचियो, कल मैं लकड़ी तोड़ूंगा, आपका दास गुजारा कर लेगा। ऐसा कह करके लकड़ी तोड़कर लाता था जंगल से और उसको शहर में बेच देता था और थोड़े से जो रोटियां जोगे पैसे मिल जाते थे तो उसको रोटियों से गुजारा करते थे, एक या दो दिन, चार दिन, जैसा भी उन लकड़ियों से चल जाता था अपना खाना खाते थे और फिर तोड़कर लाते थे, फिर बेचते थे, ऐसे गुजारा करते थे। कुछ समय के बाद कबीर परमेश्वर फिर मिले इब्राहिम को और कहा पुत्र अब तू सत्य नाम ले, सत्य नाम दिया। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब ने कहा कि जो सारनाम मैं दूंगा पुत्र, वो मैं अपने हिसाब से दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, लेकिन ये सतनाम भी इतना कीमती मंत्र है कि तुझे हो सके 100 मनुष्य जन्म भी मिल जाएंगे अगर सारनाम भी नहीं मिला तो, और अगर इसका प्रतिफल नहीं लेगा तो किसी इस काल के लोक का कोई इंद्र, महाइंद्र या कोई देव, महादेव नहीं बनेगा तो तुझे फिर मनुष्य शरीर मिलते रहेंगे और हो सके कभी फिर या दया हो जाएगी, लेकिन सारनाम दूंगा मैं जब तू योग्य हो लेगा, अन्यथा नहीं दूंगा। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए। कबीर साहब से प्रार्थना की अब्राहिम सुल्तान अधम ने कि हे दीनदयाल, आपका दास यदि योग्य हो गया हो तो सारनाम की दया करो। दाता आप ही कहते हो कि सारनाम के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहा पुत्र ये भी तो कहा है मैंने कि जब तक योग्य नहीं होगे मैं सारनाम नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कहो, आप एक वर्ष के बाद आना। एक वर्ष का दिन फिक्स किया कि उस दिन यहाँ सत्संग होगा अमुक नगरी में और यहाँ तू आना। अब्राहिम सुल्तान उस निश्चित तिथि को दिन सुबह सुबह जा रहा है, उस नगरी के अंदर से गुजर रहा है, गलियों के अंदर से सत्संग स्थल की तरफ जहां पर कबीर साहब ने सत्संग करना था, साहिब का वहां कुटिया बना हुआ था। कबीर साहब ऐसे ही अन्य रूप बना करके संत रूप में आते रहते हैं, अपना भेद नहीं लगने देते कि मैं गॉड हूं, पूर्ण परमात्मा हूं, लेकिन संत रूप में आकर गुरु रूप में स्वयं आकर के सत भक्ति ऐसे प्रशस्त कर जाते हैं। अब्राहिम सुल्तान उस सत्संग स्थल की तरफ जा रहा है, उधर से ऊपर एक छत के ऊपर एक लड़की जो कबीर साहब की शिष्या थी वो ऊपर छत को साफ करके और कुछ कूड़ा ऐसे उठा करके गली में डाल दिया। ऊपर से नीचे से अब्राहिम सुल्तान अधम जा रहा था। अब उस लड़की ने नीचे देखा कि वो तो किसी व्यक्ति पर गिर गया। लड़की ने कहा, भाई साहब अक्षमा करना, मेरे से गलती होगी, मैंने अनजान पने में डाल दिया। अब्राहिम कहता है कि यदि मैं आज राजा होता तो तुझे मजा चखा देता, और बहुत लाल आंखें करके बहुत देर तक घूरता रहा। लड़की ने कहा, भैया मेरे से गलती होगी, मैंने जानबूझकर नहीं डाला। तो पूरा वो आ गया, कहां आ गया, सत्संग स्थल पर जहां सत्संग होना था। उधर से वो लड़की भी कबीर साहब की शिष्या थी, वो जब आई सत्संग स्थल पर उसने देखा कि वो व्यक्ति जो कह रहा था अगर मैं राजा होता तो तुझे मजा चखा देता, कबीर साहब से कहा, हे गुरुवर, ये जो सामने भक्त बैठा है क्या ये कभी राजा था? कबीर साहब ने कहा, क्या बात बेटा, क्या कहानी हुई? अगजी ऐसे ऐसे मैं ऊपर से छत को बुहार कर और कूड़े को गली में डाल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, धोखा हो गया, और ये नीचे से आ रहा था, इसके ऊपर कूड़ा गिर गया, और इसने मुझे आंखें दिखाकर कहा कि यदि मैं राजा होता तो तुझे मजा चखा देता। कबीर साहब बोले, बेटे यू राजा था पहले, बहुत बड़ा राजा था, छोटा राजा नहीं था, बहुत पैसे वाला था, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। सत्संग समापन के बाद अब्राहिम सुल्तान अधम ने कबीर साहब से कहा कि हे गुरुवर, आपका दास जी यदि शारनाम के योग्य हो गया हो तो कृपा बख्शियो दादा। कबीर साहब ने कहा, नहीं पुत्र, अभी तू राजा है, दास नहीं बना है। अब्राहिम कहता है, हे दीनदयाल, आपका दास अब राजा नहीं है, आपने तो राज तो छुड़वा दिया दास से, अब राजा नहीं है, आपका दास है। कबीर साहब ने कहा, नहीं अभी तू राजा है। एक वर्ष के बाद ठीक इसी तिथि को इसी समय आना, और गुरु वचन पे नहीं चलता तो वह व्यर्थ होता है। अब इस बात को सुनकर कहा कि जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, क्योंकि गुरु आदेश में चलने से लाभ होता है। एक वर्ष के बाद फिर वो दिन आया, वही दिन जिस दोस्त में फिक्स करा था कबीर साहब ने, उसी दिन वो अब्राहिम सुल्तान उन्हीं गलियों में से आ रहा है। कबीर साहब ने उसी लड़की से कहा, बेटी अब ये व्यक्ति, ये भक्त अमुक दिन, इसी दिन अगले वर्ष, दो चार दिन पहले आगाह कर दिया उस लड़की को कि वो परसों आएगा, और उसके ऊपर अब के क्या करना, कीचड़ डालना, उसके ऊपर कीचड़ डाल देना, और फिर क्या प्रतिक्रिया कह करे वो मुझे बताना उससे पहले आकर। लड़की ने वो दिन याद था, कीचड़ का भरकर तसला ऊपर बैठ गई छत पर, और जो ही वो अब्राहिम सुल्तान अधम नीचे से गुजरने लगा, ऊपर से वो कीचड़ का पूरा तसला उसके ऊपर डाल दिया गारा का। अब अब्राहिम ने ऊपर देखा, लड़की ने कहा, भैया क्षमा करना, मेरे से गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं किया। तब कहता है, बहन कोई बात नहीं, ये तो ये भी मिट्टी है, ये पांच तत्व का पुतला भी मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर कीचड़ पे कीचड़ ही डाला है, मिट्टी पर मिट्टी ही डला है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, चिंता ना करे, धो लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहकर के अब्राहिम सुल्तान अधम एक कुएं पर गया, वहां पर सारे कपड़े धोए और स्नान किया, उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहन के, गर्मियों के दिन थे, और आके सत्संग में सतगुरु को दंडवत प्रणाम करके सत्संग स्थल पर सत्संग श्रवण करने के लिए विराजमान हो गया। लड़की ने जाकर के कबीर साहब से बताया, गुरुवर आज मैंने इसके ऊपर जब कीचड़ डाला, इसने कहा कोई बात नहीं बहन, आपने तो मिट्टी पर मिट्टी डाला है, क्या बिगड़ा इसका, अब धो लूंगा ठीक हो जाएगा, ना चिंता करें, महसूस ना करना। तब कबीर साहब ने कहा ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। अब्राहिम सुल्तान ने सत्संग के उपरांत कबीर साहब से प्रार्थना की है, परवरदिगार यदि आपका दास सारनाम के योग्य हो गया हो रजा बख्शो दाता। कबीर साहब ने कहा बेटा आज तू दास हो गया, आज तू दास हो गया, अब तुझे मैं वो सारनाम दूंगा। एक वर्ष पहले तू राजा था। अब अब्राहिम कहता है गुरुवर आपको फूल लगी है, आपका दास तो पहले से ही काफी वर्षों से आपने दया बख्श रखी है, 13-14 वर्ष हो गए और राज त्याग रखा, आप ही ने तो दया बख्शी थी। कबीर साहब बोले कि नहीं, एक वर्ष पहले इसी दिन तू राजा था। अब उसके ना समझ में आई, तब कहा कि जब इस लड़की ने पिछले वर्ष तेरे ऊपर कूड़ा डाला था आपने क्या कहा था। लड़की बोली इन्होंने कहा था कि यदि मैं राजा होता तो तुझे मजा चखा देता। जब उस अब्राहिम की याद आई, अखे परवरदिगार आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानी जान हो, आपने मेरी आंखें खोल दी, ये मालिक मत पाप आत्मा था, उस दिन मैंने ऐसे ही इस बहन से कहा था और अब के आपने ऐसी रजा बख्शी मेरे मन में ही नहीं आया, आप ही की लीला दाता। तो ऐसे संत जो हैं कच्चे जैसे डॉक्टर कच्चे फोड़े पर चीरा नहीं दिया करता, ऐसे ही संत अधूरा काम नहीं करते। ऐसे ही जब आप सारनाम लेने आओगे इस दास से, वो मेरी मर्जी होगी आपको कब दूंगा, सत नाम तक आपको शीघ्र मिल जाएगा, क्योंकि इसकी कमाई आपने बहुत ज्यादा करनी होगी। और इसकी इन दोनों यानी सतनाम दो मंत्रों से बनता है। पहला आपको पान परवाना वो 7 मंत्र का होगा, जिसमें 5 मंत्र वो होंगे जो पार्वती को भगवान शिव ने दिए थे, जिससे वो 3 लोक की अमरताओं को प्राप्त हुई। लेकिन हमने यहाँ के अमरताओं को प्राप्त नहीं होना, हमने उस प्रतिफल उस कमाई से यहाँ तक का ऋण मुक्त होगा। हमारे ये चैनल बने हुए अंदर कमल बने, इन कमलों में गणेश जी, ब्रह्मा, सावित्री जी, विष्णु, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती जी, यहाँ पर शेरा वाली अंदर दुर्गा जी का हमारे ऊपर कब्जा है, इनका ऋण होता है। जैसे टेलीफोन टैक्स बिल और वाटर टैक्स, पानी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ये इस तरह की हमने यहाँ की जो सुविधा इस काल के लोक की और एक ब्रह्मांड की, ये तीनों यहाँ के ये हमारे को सुविधा देने वाले यहाँ के प्रबंधक हैं, इनका ऋण चुकाना है। यहाँ जो सुविधा लेनी है उनका ये पहला मंत्र हम देंगे, इनके ऋण से मुक्त होना है, यहाँ की सुविधा और हमने एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, ये यहाँ तक का रास्ता हमारा ये साफ करेंगे इन मंत्रों से। 2 मंत्र और हैं जिसमें एक तो ओम मंत्र होता है और दूसरा एक सांकेतिक रखा है, वो ऐसे नहीं बताया जाता क्योंकि एकदम ऐसा साथ ही साथ बताने से इस प्रकार तो वो मंत्र बना हुआ उसको कोई भी सुनकर जाप करना प्रारंभ कर देगा तो उसको आंशिक लाभ मिल सकता है और उसका दुरुपयोग करेगा और जिससे वो हानिकारक होगा उसको भी और देने वाला भी दोषी हो सकता है, इसलिए संतों ने इसको सांकेतिक रखा है। ओम नाम को क्लियर बताया है तो इसमें ओम नाम की कमाई से हम इस काल के 21 ब्रह्मांडों से ऋण मुक्त होंगे। प्रथम मंत्र से तो हम एक ब्रह्मांड से मुक्त होंगे जो हम प्रथम मंत्र आपको देंगे और दूसरा जो मंत्र सतनाम होगा उसमें एक ओम नाम की कमाई है उससे हम 21 ब्रह्मांडों के ऋण से मुक्त होंगे और ये कमाई ओम नाम की कमाई का बेनिफिट है कि यहाँ पर अच्छी कमाई जो हम बताएंगे ऐसे कर लेगा कोई तो यहाँ पर महादेव भी बन सके है, विष्णु भी बन सके है, शिव भी बन सके है, इंद्र भी बन सके है उस विधि से, क्योंकि उससे ज्यादा कमाई होती है, ज्यादा बेनिफिट होता है। और ये हमने नहीं लेनी, इसका केवल यही बेनिफिट है, प्रभु नहीं मिलता ओम नाम के जापते। गीता जी के 11वें अध्याय के 47, 48, 53, 54 श्लोक में स्पष्ट है कि वेदों में वर्णित विधि से ओम नाम का जाप अर्थात यज्ञ हवन आदि तप क्रिया से कहते मैं नहीं मिल सकता, तुम प्रभु तो मिल ही नहीं सकता, उससे अन्य बेनिफिट है तो वो हमने लेने नहीं, उसके बदले में हम इसको दे देंगे वह सारी कमाई, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यही स्पष्ट किया कि अर्जुन तू सभी मेरी पूजाओं को छोड़ गए, मेरी जितनी भी धार्मिक पूजा नहीं धार्मिक जितनी भी तूने कमाई की है सर्वधर्मान प्रीताज माम, मेरे सारे पूजाओं को छोड़ गए, एकम शरणम व्रज। अब यहां पर लिखा है कि मेरी जो है सभी जो मेरी पूजाएं तूने की हैं ओम नाम के जाप की मेरे लेवल की वो मुझमें छोड़ गए, माम माने मुझमें जमा करा दे, और तू उस एकम शरणम व्रज उस एक परमात्मा की शरण में चला जा और फिर मैं तुझे यहां सब कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे, अर्थात मेरा ऋण मिल जाएगा, मेरा ऋण मुक्त हो जाएगा और तुझे मैं छोड़ दूंगा, ऐसा काल कहता है। और दूसरा जो मंत्र होगा वो पारब्रह्म के लोक का टैक्स होगा, किराया होगा, उसके अंदर से हमने जाना वो बहुत लंबा चौड़ा है, वो जहाज का किराया होगा वहां से वहां तक का, और जो सारनाम होगा वो ऊपर स्थाई स्तव हमें प्रदान कराएगा, वो जब कामयाब होगा जब हम इस यहां से ऋण मुक्त होने के योग्य हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होगा, इसलिए वो बाद में दिया जाता है। जब तक वो ये नहीं मिलेगा, ये पूरा नहीं कमाई बनेगी तो वो काम कति नहीं करेगा, और वो नहीं होगा तो ये व्यर्थ है, इसलिए गरीबदास जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सुमरण के अंग में गरीबदास जी की वाणी में के सोहम ऊपर और है सत्सुकृत, एक नाम सत्सुकृत, सत्सुकृत नहीं है वो और नाम है, वास्तविक सार नाम है, और उसके बाद जब ये जीव छुटकारा होगा इन तीनों विधि से और तीन ही मंत्र तीन ही स्थिति मिलेंगे तो जीव छुटकारा होगा, नहीं तो ये जीव पार नहीं हो सकता, बेसिक बात बनावे। अभी हम क्यों बार बार समय बढ़ा रहे हैं, अब जैसे अब संत जन है वो पिछले बहुत अच्छे पुनकर्मी प्राणी थे, शास्त्र अनुकूल साधक थे, आज भी उनकी प्रभु में तड़प है और लगे हुए हैं, लेकिन विधि गलत हो जाने से अब वो बिल्कुल डिस्चार्ज होकर जाएंगे। ठीक है पिछली कमाई तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, और जो थोड़ा बहुत कोई शास्त्र पठन पाठन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सत्संग अकॉर्डिंग टू द गीता, गीता के अनुसार कबीर साहब के अनुसार थोड़ा बहुत बता रहे हैं, वैसे तो जब उनको अधिकार ही नाम नहीं देने का नहीं है तो वो दोषी तो है ही है, क्योंकि उन भोली आत्माओं को गुमराह किए बैठे हैं जो ढूंढ अपने कोई सतमार्ग को ढूंढ लेते हैं घूम फिर के, अब उनको बांध लिया उन्होंने, ये पक्के दोषी है। ठीक है उनका जो नित्य पाठन पठन पाठन कर रहे हैं स्वयं इन धार्मिक शास्त्रों का, उसका कुछ ज्ञान यज्ञ बन जाता है, ज्ञान यज्ञ का प्रतिफल जब कभी उनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा, तो उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा स्वर्ग आदि का, घंटे दो घंटे दस घंटे का राहत मिल जाएगी, और इससे ज्यादा लाभ नहीं है। ऐसे अब्राहिम सुल्तान अधम का कल्याण हुआ, कबीर परमात्मा ने उनको पार किया। अब देखो बात प्रसंग चल रहा था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को धन दे दिया और दारिद्र मुक्त कर दिया, और इतना धन दे दिया कि सारे जीवन उसको बहुत रहा, पर्याप्त रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को काल के जाल से नहीं निकाल सकते, जन्म मरण को नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये स्वयं जन्म और मृत्यु के अंदर है, श्री कृष्ण भी अर्थात विष्णु ब्रह्मा और शिव भी, और साथ में ये काल भगवान ज्योत निरंजन भी, ये भी स्वयं भी जन्म और मरण के अंदर है। आप स्वयं गीता जी के अंदर भगवान ब्रह्म बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश होकर, और इनके पिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये ब्रह्म वो स्वयं कहते हैं कि मेरे भी असंख्य जन्म हो लिए, और जो जो यहां पैदा हो गया उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जो मर गया उसकी पुनर्जन्म अवश्य होगा, ये तो चक्कर बना ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी जन्म और मरण में हूं, ये ब्रह्म कहता है। अब देखिए गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर, ये इधर देखिए 11 12 में स्पष्ट लिखा है कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, ये ब्रह्म बोल रहा है, काल चर पुरुष ज्योति निरंजन, तथा तू अथवा तू नहीं था अथवा ये तथा ये राजा लोग नहीं थे और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। स्पष्ट है कि आप और हम मेरा जन्म मरण बना ही रहेगा, जन्म और मृत्यु। इसके बाद देखिए इसी के अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 27 में, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अब फिर देखो ये अध्याय नंबर 4 का इसी गीता जी के श्लोक नंबर ये 5 है, ये देखिएगा नीचे, ये 4 है ये 5 है और इसका इधर अनुवाद है। हे प्रणतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्थात ये काल स्वयं स्वीकार कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन, अतः 10वां अध्याय ये श्लोक नंबर 2, इधर इसका अनुवाद देखिएगा, मेरी उत्पत्ति को, देख ले इसका मतलब काल का जन्म है, कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये तो लीला आप लिख रहे हैं, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब देखो कितना स्पष्ट है, ये काल भगवान कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ये देव ऋषि वैसे नहीं जान सकते, क्योंकि मेरे से ही ये सबकी उत्पत्ति होती है और काल की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है। इस काल की उत्पत्ति के लिए अध्याय नंबर 3 का ये श्लोक नंबर 14 आपके सामने है। काल ये ब्रह्म है, अध्याय नंबर 3 है और श्लोक नंबर 14-15 में देखिए, ये देखना, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था बेचारों को। यहाँ देखो यज्ञ जो है धार्मिक कर्म, कर्म सम उद्भव है, यानी कर्मों शुभ कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों से शुभ कर्मों से यानी यज्ञ होती है के होने वाले हैं, और कर्म जो है ये काल ने लाए हमारे, क्योंकि यहाँ फंसे तो हमने काम करने, ये कर्म करने पड़े, यज्ञ हवन यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए। ये ब्रह्म उद्भवम यानी कर्म इस काल ब्रह्म से लगे, और ब्रह्म यानी इस काल भगवान की क्षर पुरुष की उत्पत्ति अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा से हुई। इन्होंने यहाँ वेद लिखे, ये नहीं ठीक है, यहाँ पर लिखना था इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए ये कर्म, क्योंकि हम यहाँ फंसे तुम्हारे कर्म लगे, जन्म मरण में फंस गए और शुभ कर्म करने पड़े, तो इसलिए कर्मों को यहाँ लिखना था, वे कर्म जो है ये कर्म है इस काल से उत्पन्न हुए बनने लगे, और काल की उत्पत्ति क्षर पुरुष की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से हुई। ये देखियो उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा परम अक्षर परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म ही नित सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठितम, यानी सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात ये अधियज्ञ भी यही है, अधियज्ञ यानी यज्ञ का मुखिया, जिसके निमित्त सब धार्मिक कर्म किए जाने चाहिए। सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा लिखा यहाँ पर स्वयं इन्होंने, तो यहाँ लिखना था इस काल परमात्मा की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई, ये स्पष्ट है। इसी प्रकार वेद में, यानी आपको दिखाया था मैंने अथर वेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में। अब ये दास ये बताना चाहता है कि ब्रह्म इस काल के ही पुत्र विष्णु, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, अर्थात ये विभागीय एक स्टेट के अंदर, एक प्रांत के अंदर विभागीय मंत्री जानो, इनमें भी शक्ति होती है पर प्रधानमंत्री के तुल्य नहीं हो सकती, अंडरस्टूड है। अब ये प्रसंग चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा को राहत जरूर दी लेकिन जन्म मृत्यु नहीं मिटी, और कबीर साहब ने इनसे अधिक दी, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया 1 रोटी खा के, और उन्होंने चावल खा करके केवल थोड़ा सा धन दिया, दारिद्र मुक्त कर दिया, वो भी राहत बहुत है। एक गरीब आदमी को धन मिल जाए बहुत है, लेकिन कुत्ते के दे सुअर 84 दुनिया नहीं मिटी तो कुछ भी नहीं है। अब क्या कहते हैं कबीर साहब, और कबीर साहब ने 7 पीढ़ी का राज दिया फिर उसको पार किया। ऐसे सम्मन को जैसे मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज को श्री कृष्ण भगवान ने जीवित किया, इतना कर सकते हैं ये, लेकिन 84 उनकी नहीं मिटा सकते, जन्म मरण नहीं मिटा सकते, काल से नहीं छुटवा सकते। कबीर परमात्मा ने दोनों काम किए, सम्मन के पुत्र सेव जो उसके सम्मन ने ही स्वयं चीर काट दिया था उसको जीवित किया, और फिर उनको उसी उज्जीवन में उनकी इच्छा कोई नहीं रही सेव की, समन के पुत्र की, और नेकी समन की पत्नी, वो तो उसी जीवन में मुक्त होगी। ये जन्म तो हम स्वयं बढ़ा देते हैं, नहीं तो अभी इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे अगर पूरा विश्वास और तीनों मंत्र प्राप्त करके, और फिर पूर्ण रूप से अंतिम सांस तक गुरु मर्यादा में परमात्मा तुल गुरु को मानते हुए अपना जीवन बितावे, फिर उनको सार शब्द उपलब्ध करवाया जाएगा और फिर वो मुक्त हो जाएंगे। इसी जीवन में हो सके, कोई जीवन नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जन्म हम बढ़ा लेते हैं। जैसे सम्मन के मन में कल्पना बनी रही कि यदि मेरे पास धन होता तो मैंने पुत्र नहीं काटना पड़ता, यही कल्पना बनाई रखी, कोई बात हुई धन भी दे दिया दाता ने उसी जीवन में, लेकिन फिर भी वो नहीं मिटी उसकी तरफ, और उसको तीसरे जन्म में मुक्त कर दिया। अब्राहिम सुल्तान अदम वही सम्मन की आत्मा था, तीसरे जन्म में पार कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण जन्म मरण नहीं छुटा सकते, प्रभु अवश्य हैं तीन लोक के हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। अब एक समय की बात है, अब्राहिम सुल्तान अधम अपने उस राजधानी के बनी में जाकर एक तालाब पर विराजमान हो गया, बलक शहर के तालाब के ऊपर जाके विराजमान हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, फट पुराने पुराने कपड़े, और वहां पर बैठा। पता लग गया गांव नगर निवासियों को कि राजा अब्राहिम सुल्तान आए हुए हैं और तालाब पर विराजमान है, सारा नगर को पता लग गया, उधर से उसके पुत्र जो राजगद्दी पर बैठा था उसको पता लग गया। वो राजा बना हुआ लड़का अब्राहिम सुल्तान अदम का आया और कहा, पिताजी आप घर चलो अब्बा जान, आप देख क्या हालत कर ली आपने, आप अपने घर रहो या भक्ति करो, और देखो आप मेरे पास ये ठाठ हैं, आज मेरे पास इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, हैं आपकी मौज कर दूंगा, ये कर दूंगा, खूब सेवा करूंगा अपने पिता की। अब्राहिम सुल्तान अदम ने कहा कि पुत्र तू कुछ नहीं कर सकता, जो प्रभु कर सकता है। राजा में अभिमान हो जाता और जवान बालक में तो गना हुआ है, कैसे कहते हो पिताजी, या कौन सी बात, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक आज्ञा दो मुझे। अब्राहिम सुल्तान ने एक नीडल, लोहे की सुई जो कपड़े सीने की होती है लंबी सी छोटी सी, उसको एक उसी तालाब में डाल दिया और कहा, पुत्र अगर तू सब कुछ कर सकता है तो मेरी ये सुई ढूंढवा के दे दे, निकलवा दे तालाब तक। अब उसने खूब कोशिश की, अब सुई कीचड़ में मिला है कभी, कहने लगे पिताजी कोई और जितनी सुई कहो अभी ला देता हूं, अगर नहीं मुझे वही सुई दे दो, जब जानो तो सब कुछ कर सकता है। कबीर साहब उसने उसके लड़के ने कहा कि क्या आपका अल्लाह खुदा ये कर सकता है, इसको ढूंढ सकता है एक एक सेकंड में? मेरा अल्लाह तो दूर रहा, उस अल्लाह की रजात है ये सब प्राणी मेरे अपने हो गए, ये मेरी मदद में रहते हैं। उसी समय अब्राहिम ने कहा कि हे जल की मछलियां, इस दास की एक सुई आपके तालाब में गिर गई, रजा करोगी वापस देने की? इतने में एक मच्छी सुई मुख में लिए हुए उस नीडल को पर सामने ऐसे कर रही है, ऐसे किनारे के साथ सामने ऐसे नाच फटफड़ा रही है और मुख सामने कर रही है। अब्राहिम ने पकड़ा और सुई पकड़ के वो गोता लगा के दूर चली गई। कहा कि देख पुत्र, तू नहीं कर सकता, वो प्रभु कर सकता है। प्रभु तो दूर रहा, मेरे हर जीव मेरा साथी हो गया, अब मुझे दो कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। इतना कहकर अपन उठा के कंबल को चल पड़े। कहां पहुंचे? मक्का में पहुंच के। मक्का में जाकर के उन अज्ञानी लोगों को जो भोली आत्मा सोचती हैं कि मक्का में दर्शन करने से मुक्त हो जाएंगे, उनका अंधेरा हटाने के लिए वहां जाकर के मक्का की तरफ पैर करके अब्राहिम सुल्तान आदम सो गया, लेट गया। अब किसी ने बाहर बताया कि उनको काजियों को जाकर कहा, मुल्लाओं को, कि मक्का की तरफ पैर किए हुए एक व्यक्ति सो रहा है, मानता नहीं हम कहते हैं, कहता है भगवान सब जगह है, अल्लाह सर्वव्यापक है, अल्लाह कोई विशेष स्थान पर नहीं है, ऐसा कहता। तो मुल्ला और काजी गए वहां पर गुस्सा होकर और कहा कि ओ कमबख्त, तुझे शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होकर के और मक्का की तरफ पैर करके सो रहा है, काफिर तू क्या कर रहा है? अब्राहिम ने कहा कि काजी, जिधर अल्लाह नहीं है मेरे पैर को उधर कर दे, जहां अल्लाह ना हो उधर कर दे मेरे पैर को, आप ही कर दो, आप दया कर दो, मुझे बुखार आया हुआ है। अब उस मुल्ला ने काजी ने पकड़े उसके पैर और दूसरी तरफ पटक दिए, वो मक्का उसी तरफ उठकर वहां से उसी तरफ दृष्टि गोचर होने लगा। अब गुस्से में तीसरी तरफ पटक दिया, चौथी तरफ पटक दिया, उधर ही मक्का साथ साथ जा रहा है। इतने में उसको पकड़कर गुस्से में ऊपर को कर दिया, ऐसे ऊपर को, पैर उसके ऊपर ही मक्का दृष्टि गोचर है, यथा स्थान पर नहीं है। आखिर में वो थक कर डाल कर चले, क्योंकि ये अभिमानी लोग होते हैं, इनकी महिमा बन जाती है, ये गुरु जो बन जाते हैं ये नहीं मान सकते चाहे परमात्मा सामने आ जा, ये तो अपनी मान बढ़ाई में इतने गिर जाते हैं, ये नहीं मान सकते, ये तो पशु बन सकते हैं लेकिन सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। सामने देखा कि इतना भक्ति युक्त प्राणी है और सत्य बता रहा है, फिर भी नहीं स्वीकार किया, और चाहिए था उस महापुरुष के चरणों में गिर के उपस्थित सभी व्यक्तियों ने और सतमार्ग पूछना चाहिए था कि ये क्या बात है, कैसे परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्ति होती, लेकिन नहीं, क्योंकि वो गुरु लोग नहीं आगे बढ़ने देते। उन भोली आत्माओं के कहते हैं तो जादूगर है, ऐसे ही करता रहता है, ऐसे थोड़ा ही मक्का हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे ही वैसे इसने हमारी आंखों में कुछ जादू कर दिया था। वो भोली आत्मा होती है, प्रभु की प्यासी होती है, गुरुओं के बंधी हुई होती है, ये स्वयं अंधे होते हैं, इस जीव को सतमार्ग पर नहीं लगने देते और ये स्वयं दोषी है, उस प्रभु के अंत में बहुत कष्ट पाते हैं। इस प्रकार ये पुण्यात्मा प्रभु को प्राप्त हुई। अब कबीर परमेश्वर की समर्थता का और प्रमाण ये दास देना चाहेगा। एक समय कबीर साहब जब काशी में स्वयं प्रकट होकर एक मानव रूप में लीला करने आए हुए थे, वो हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे काशी में कि भैया प्रभु आपका दोनों का एक ही है, और तुम दोनों ही शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हो, तुम्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं और ना ही तुम्हारे गुरुओं को, ये केवल तुम्हें काल तक ही बांधी हुई है, और गीता और वेदों के विरुद्ध हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध हिंदू गुरु साधना करवा रहे हैं और मुसलमान उस पूर्ण अल्लाह का ज्ञान ना होने से गलत मार्गदर्शन प्राप्त हैं और साथ में मांस मिट्टी खा रहे हैं। अरे ये तो बहुत बुरा महापाप हो जाएगा, हिंदू भी मांस खावे और बीड़ी पीवे शराब पीवे और मुसलमान मांस खावे रोका पीवे और सोचें कि हम मुक्त हो जाएंगे, सपने में भी नहीं हो सकते। कबीर साहब कहा करते थे कि जिस माता का दूध पीत हो पीवत हो और दूध गरत बहु खाई, उसको फिर तुम कत्ल करत हो और लेकर कर्द कसाई। मुसलमानों के पीरों को कबीर साहब कहा करते कि जिसका हम दूध पीवे उसको माता कहते हैं, और गौ माता का तुम दूध पीते हो और फिर उसी को कत्ल करते हो। जिस ममड़ी का दूध पिया और गरत मक्खन गरत बहु खाई, और वह को फिर तुम हलाल करत हो लेकर कर्द कसाई। ऐ नादान कहेंगे, अब तुम देखो गाय का दूध पियो, घी खाओ, उसके बच्चे हल्के जोतने में काम आवे, और कितना श्री पशु होता है। अब मांस खाकर तो एक बार ही खराब कर दिया उसको, उसका दूध पियो घी खावे और इस प्रकार पाप से बचोगे इस बात से। और फिर कहते हैं तुम कहीं पर नहीं लिखा ऐसा कि मांस खाओ, तुम्हारी कोई किताब में नहीं लिखा। जो जैसे पवित्र बाइबल में एक सामूहिक ऑर्डर है, बिल्कुल पवित्र बाइबल मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म का एक सामूहिक मान्यता प्राप्त ग्रंथ है पवित्र बाइबल। उसमें प्रभु का आदेश हर इंसान हर पैगंबर मानता है कि बाइबल में जो प्रभु ने आदेश दिया वो सत्य है। तो उसमें आदेश है कि कोई भी मांस नहीं खाओगा, तुम्हारे लिए खाने के लिए केवल बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, और ये कहां से प्रकाशित है ये आप देखिएगा, यहां से इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड किल्पक मद्रास दूरभाष इतने। और इसमें उत्पत्ति ग्रंथ से प्रारंभ होता है, ये देखिएगा इसमें लिखा है कि प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति विश्व की सृष्टि, यहां देखिएगा सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, फिर दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, और यहां देखो 5वां दिन, ये 5वां दिन, और नीचे 6ठा दिन। ये 6ठे दिन में परमेश्वर ने, यहां देखो नीचे, ये नीचे पर इसमें 2 प्रमाण हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी मानवता समानता में बनाए, अर्थात परमात्मा मनुष्य जैसा है इति सिद्धम। और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, अर्थात इनसे ये स्याना हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी मनुष्यों की सृष्टि की। 3 बार लिखा इसमें कि परमात्मा ने अपना ही स्वरूप मनुष्य बनाया, अर्थात प्रभु अल्लाह वास्तविक जो भगवान है वो आकार में मनुष्य जैसा है। और फिर उसी का आदेश है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको ही दिए, तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। ये मनुष्यों को आदेश है, यह कहीं नहीं लिखा इस ऑर्डर में प्रभु का, ये पूर्ण परमात्मा का आदेश है। आगे जो इस बाइबल में आदेश है वो काल और काल के देवताओं के, जो जीव को बुद्धि भ्रष्ट करता है और पथ रास्ते से गिरा देता है, और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। यानी पशु पक्षियों को इवन शेर को भी मांस खाने का आदेश नहीं है, लेकिन ये इतने गिर जाता सतर के फिर कोई कहे। और फिर कहे कि परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने कुछ बनाया और अच्छा लगा। 7वां दिन यों आकाश और पृथ्वी की सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और तखत पर जा विराजा। 7वें दिन विश्राम किया, तखत पर जा विराजा। अब ये देखना होगा हमने कि ये पवित्र बाइबल हर एक ईसाई और मुसलमान को मान्य है, और इसी का प्रमाण कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर परमेश्वर है। इसके बाद आगे आदम और हवा बनाया, ये काल ने अपनी कलाबाजी प्रारंभ की, और फिर उनको धोखे में रखना, तो ये फल वाले बीज मत, बीज वाले फल मत खाना, तू मर जाएगा। फिर सांप ने बताया कि तू खा ले नहीं मरेगा, फिर उन्होंने खा लिया, फिर भगवान ने उनको श्राप दे दिया, वहां से निकाल दिया। ये काल के जाल थे, वो सामने नहीं आता और गुप्त रूप में सब कार्य करता रहता है। ये काल का की कला वहां से प्रारंभ हुई, और इसमें सब मुसलमान धर्म में ये मानते हैं कि अल्लाह तो निराकार है, वो तो अव्यक्त है, वो सामने आता ही नहीं, और पवित्र बाइबल कहती है वो तो आकार में है और तख्त पर जा विराजा, वही पवित्र ना कुरान शरीफ कहती है कि वो तो आकार में है, और यही जो पवित्र बाइबल में लिखा है जो कहते हैं उस कुरान शरीफ में यही वर्णन आदेश है उस निराकार अल्लाह का अपने पवित्र अपने प्रिय उसका मोहम्मद जी को। काल कह रहा है कि निराकार अल्लाह बोल रहा है किसी के अंदर प्रवेश करके और कहता है कि वो परमात्मा पूर्ण है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, अर्थात भगवान आकार में है तो जा विराजा, उसका आकार है और वही जो बाइबल बता रहा है वही परमात्मा। इसलिए और मुसलमान धर्म सारा उसको निराकार माने, हिंदू धर्म उसको निराकार माने, और जितने ये पंथ हैं बने हुए हैं जो सतलोक का दावा करते हैं, धन धन सतगुरु सरादा स्वामी बाल योगेश्वर जितने भी महापुरुष हैं और कहते हैं वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता है, इन्होंने ना तो भगवान का दर्शन हुआ ना इनके संतों ने हुआ, अगर हुआ हुआ तो बताते वो आकार है और कबीर परमेश्वर है और वो सतलोक में रहता है। देखिएगा ये कुरान शरीफ में वही प्रमाण है। ये बार बार इस दास ने इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये बहुत नया ज्ञान होगा और पुराना रंग बहुत चढ़ा हुआ है। अब जितने कोट ज्यादा होंगे ज्यादा सुनाऊंगा, जल्दी आपके हृदय में समाओगा। ये कुरान शरीफ के बारे में लिखा है कि यह वह इलाहमी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, कुरान शरीफ। आगे लिखा कि शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में, ये आगे नीचे देखो ये कहां से प्रकाशित है, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और यहां देखिए इसके कुरान सूरत नंबर 25, सूरत नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 606 और 25 नंबर सूरत फुरकानी, सूरतुल होते नहीं सूरत कही जाती सीधी, सूरत फुरकानी 25 और 606। इससे पहले 605 पर आप देखेंगे कबीर शब्द का अर्थ है, 704 706 ये वही 25 नंबर पे, और नीचे देखो ये 604 प्रश्न पे है। ये आयत नंबर 52 से प्रारंभ करूंगा, फला तुलित तुतिल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द स्पष्ट, ये नै नहीं बोला जाता, इसमें बोला लिखा जाता है लेकिन हिंदी में इसको केवल कबीर कहा जाएगा। वो परमात्मा कबीर है और काफिर इसको नहीं मानते हैं, ए अल्लाह, अल्लाह ने कहा निराकार जो हजरत मोहम्मद को जिसने भेजा वो कहता है उन काफिरों का सामना करना, उनके साथ संघर्ष करना, वो नहीं मानते कि कबीर परमात्मा है। तो इस लिखी हुई इसमें कुरान शरीफ की दलीलों पर विश्वास रखते हुए उन काफिरों का के साथ संघर्ष करना, इनकी हिंदी देखना, ये 52-51 है, ये 52 नंबर, ए पैगंबर, यानी कोई निराकार अल्लाह बोल रहा है, हे वो जिसको ये पैगंबर यानी अर्थात हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मानते हैं, जिसकी तरफ से उसको आदेश आ रहे हैं। जैसे आजकल ये ब्रह्मा कुमारी वाला एक नया पंथ ऐसा ही चल रहा है, जो अपने अपने हिसाब के उनके इस काल के दूतों के फरिश्तों के अंदर प्रवेश करके ये प्रेत आत्माओं के ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसे ही ये निराकार अल्लाह बोल रहा है किसी व्यक्ति में और कह रहा है कि ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। ये जोर नहीं है, बड़े नहीं है, ये बड़े का अर्थ कबीर को बड़ा मानते लिख देते हैं, कबीर परमात्मा के लिए उनका संग से संघर्ष करना, उनका काफिरों का मत मानना, कहा वो नहीं मानते कि कबीर परमात्मा है। अब इसी का लगातार 53 नंबर आयत में ये वही सूरत फुरकानी 25 नंबर और 606 पृष्ठ पे, ये पृष्ठ है इधर 607 पे, ये सारा वही दिखा कि और वही है जिसने, वो कबीर परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, अर्थात सब कुछ करने वाला, एक पानी का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को आड़ और मजबूत रोक बनाकर बना दी। और वही है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया, फिर उसको यानी साहिब नसब यानी सब ठाट दिया, पर बेटा बेटी पत्नी पति सब बनाकर दामाद बहू करके सब कुछ दे दिया, और वो तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, उस कबीर के सिवा ऐसों को पूजते हैं देवी देवता जी को, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न ही उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करते। ए पैगंबर, हमने तुमको, वो निराकार अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद, हमने तुम्हें यानी मैंने तुझे ये खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म यानी ये संदेश देने का सत्संग करने पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तार कर ले। अब देखो, और ए पैगंबर, ये हजरत मोहम्मद को आदेश है, कुरान शरीफ में भगवान के माने जाते हैं, लेकिन ये काल बोल रहा है। और उस जिंदा कबीर परमात्मा जिंदा रूप में, मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं उसके रूप में आते हैं, उस जिंदा जो तुझे मिला था, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी उसकी पवित्रता को बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वो बहुत काफी खबरदार है, जिसने आसमान और ये बात देखने की कोशिश करे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा, वो अल्लाह बड़ा रहमान है, वह अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा माने कबीर, क्योंकि ये संस्कृत में कबीर लिखा है, अभी दिखा ना इसमें उर्दू में कबीर ही लिखा है, वो अल्लाह बड़ा, बड़ा बड़ा माने कबीर, ये कबीर का अर्थ बड़ा के देते हैं, कबीर अल्लाह बड़ा है, बड़ा रहमान है, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा दयालु है। तो उसकी खबर किसी बा खबर से, उसकी खबर किसी बा खबर इल्म वाले से पूछ देखो, ए मालिक सच्चे। ये 59 नंबर आयत में अब ये कहा कि उस परमात्मा कबीर परमेश्वर के बारे में किसी बा खबर यानी तत्व भेदी संत से उसकी खबर पूछ लो, पूछ देखो। ये अल्लाह स्वयं नहीं कह रहा कि मैं बता दूंगा तुम्हें उस अल्लाह के कबीर परमात्मा के पाने की विधि, नहीं, उसी संत को ढूंढो जो इसका सही मार्ग जानने वाला ये ऐलान किया, ये आदेश है। और वो वही परमात्मा जिसने 6 दिन में उस जिसने आसमान और जमीन के जो कुछ बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा, अर्थात मनुष्य है तो जा विराजा, पवित्र बाइबल से इसका सीधा लिंक है। और ये नादान संत बहकार इन बोड़ी आत्माओं को, मुसलमान के पीर और काजी कहते नहीं वो तो निराकार है, वो तो आकार में कभी आता ही नहीं, और कुरान शरीफ का वो आकार में है। तो इस प्रकार ये हिंदू और मुसलमानों के अधूरे गुरुओं ने इन भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर रखा है, क्योंकि ये पुण्य आत्मा थी, बोली आत्मा थी, हमारे पूर्वज विश्वास बहुत किया करते हैं और आज भी भक्ति मार्ग पर तो कर ही रहे हैं, कोई कुछ भी बता रहा उसी को सत्य मानकर, हाँ जी बहुत अच्छा, क्योंकि ये मानते थे कि द्वापर युग से पहले, द्वापर युग तक कोई भी संत झूठ नहीं बोला करता, जिसको जितना मार्ग ज्ञान होता उतना बता देते और शास्त्र के अनुकूल बताते थे, जितना उनको बेरा था ज्ञान था। अब कलयुग में कोई डर नहीं रहा भगवान का, सब नास्तिक हो गए, स्वार्थी हो गए, महिमा के भूखे हो गए, और जिसके कारण ये सारा काम बिगड़ गया। अब इससे दो बातें सिद्ध होगी कि वो अल्लाह निराकार, जैसे ये आपको बताया मैंने ब्रह्मा कुमारी के एक पंथ चल रहा है ऐसा ही, और ये सब सारा का सारा गलत मार्गदर्शन होगा, और ये भोली आत्माओं को लाखों की संख्या में ये बिगाड़ जाएंगे अंत में, ये नादान अटकलों अब वो क्या मानते ब्रह्मा कुमारी वाले कि वो गीता जो है भगवान कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर शिव भगवान प्रवेश कर गया और उसने बोली है। और शिव जब वही आदेश कहते हैं अब आ रहे हैं, जब वो आदेश वही भगवान एक ही है गीता को बोलने वाला, तो अब गीता बोली बाली रही उसकी, तो अन्य आदेशों की क्या आवश्यकता है, यही सोच लेना। इनकी बुद्धि देखो, अकल भगवान सोच दी दे दाता इन सबको, और ये बख्श दे इस भगवान की प्यारी आत्माओं को। जब उसी को मानते हैं कि शिव ने, ये शिव कौन है, ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये काल ब्रह्म लोक में रहता है एक ब्रह्मंड में, और वहां ये ऐसी लीला करके रखता है। तो उस ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके जैसे वो गीता बोली थी वो उसी भगवान ने शिव ने बोली, और अब भी बोल रहे हैं कि अभी मान रहे हैं कि दो कुमारियों यानी कुंवारी लड़कियों में लड़की के अंदर प्रवेश करके कौन, पहले तो ब्रह्मा प्रवेश करे उसमें, और ब्रह्मा की आत्मा में मिला शिव प्रवेश करे, और तब वो बोल रहे हैं वो आदेश सही है। तो क्या भगवान के फिर ये आदेश गलत है, जब ये गीता बोली बाली है उसी भगवान की, उस ब्रह्म की, उस काल की, और वो खुद कहता मैं काल हूं और काल ही की पूजा ये ब्रह्मा कुमारी वाले फिर दृढ़ कर रहे हैं, और वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही ये जो लिखा वो सत्य है, फिर और भगवान ही बदल गया या वो अपनी दोगली बात करेगा कि आज उस चैलेंज और उसको चेंज कर देगा अपने ऑर्डरों को। अब ये बात नहीं समझ मारी, ये परमात्मा ये कहां ले जाएंगे इस बोढ़ी आत्माओं को, कुछ तो बख्शो रहम करो इस इन बोढ़ी आत्माओं पे। ये काल के दूत बोल रहे इन माँ के इन लड़कियों में, ये प्रेत आत्मा जो भ्रष्ट है ना पहले के, जिन संतों ने कोशिश की अपने मनमुखी साधना करके और वो पत्र बन गए, और पत्र बनकर वो किसी में भूत की तरह प्रवेश कर जाते हैं और अपनी मनमुखी बातें उनके अंदर बोल रहे हैं। ये डरते बोलियो आत्मा, ओहो देखो आप तो ये निष्कति, ये तो ऐसे निढाल होगी थी ये लड़की, इसमें तो शुद्ध बुद्ध नहीं रही थी, और फिर ऐसी कड़क के बोलती है या करो था मा जाओ आपको सैकड़ों दिखाऊ ऐसे भूत प्रवेश किए, फिर ना बेरा ना जाने क्या क्या बोली बोले। तो क्या ये परमात्मा के आदेश है, परमात्मा का आदेश वे मानते हैं, गीता शिव ने बोली और शिव की गीता बोली बाली, फिर अन्य की क्या आवश्यकता है इसके आधार पर चलो। ऐसे ये सारी कहानी काल बिगड़वा दे अपने दूतों के माध्यम से, किसी में प्रवेश करो और नोट डरा दे, हनुमान बोल रहा हूं मेरी ये बोल दो, मेरा ये कर दो, लाल लंगोट ला दो है? और सवामन का मेरा भोग लगा दो, नादान कहीं के हनुमान बोल लगाई बाके। तो ऐसे ये उलझेड़े अब फिर उड़ जाती है, ऐसे ही ये, क्योंकि कभी पवित्र बाइबल में प्रभु का अंतिम और फर्स्ट एंड लास्ट आदेश है और उसको हमने मानना पड़ेगा। आगे जो आदेश कुरान शरीफ में या पवित्र बाइबल में इस अल्लाह को और के अन्य निराकार अल्लाह के या उनके दूतों के आदेश है, वो प्रभु के आदेश नहीं है। प्रभु का आदेश मांस खाने का नहीं है, इसलिए हमने नहीं खाना, और नहीं हजरत मोहम्मद जैसे और पवित्र आत्मा ने और साथ में ईसा मसीह जैसी, अब्राहिम जैसी, मूसा जैसी महान आत्माओं ने कभी ये छुआ भी नहीं था मांस। गरीबदास जी कहते हैं अरस कुरस पर अलह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अबदाली। अरस कुरस पर आसमान के ऊपर कबीर परमेश्वर का अल्लाह यानी सारी सृष्टि के मालिक का ताकत है, और इस खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक यानी पूर्ण परमात्मा के बिना यहाँ एक रजमा भी खाली नहीं, उसकी निराकार शक्ति आज सब के अंदर समाई हुई है। और वो पैगंबर जो तुम्हारे 180,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के, वो कहते पैगंबर थे वो पाक पुरुष थे, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो कृपा पात्र थे उस प्रभु के, वो तो पवित्र आत्मा थी, वो मांस मिट्टी नहीं खाते थे। आगे बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंद जिन्हें कर चलाया। अब कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं मुसलमानों ये गुमराह कर रहे तुम्हारे को ये काजी और मुल्ला, 180,000 को सौगंद जिन्हें कर चलाया, नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो पूजनीय आत्मा थी, इसी पुण्य आत्मा जिन्हें संघर्ष किया एक अल्लाह पर लगाने के लिए। लेकिन ऐसे ही ये काल अपने फरिश्तों को भेज ब्याज के इन भोड़ी आत्माओं को दबाव देकर डरा डरू के और अपना ज्ञान भर देता है, फिर पीछे से परमात्मा आते हैं या उनका संत आता है, तब तक वो इतने प्रभु बन जाते हैं वो उस समय के पैगंबर यानी संदेशवाहक संत, वो काल यानी जब वो काल के दूत बन गए, क्योंकि उसी तक की साधना बता रहे हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान कोई भी पैगंबर या संत बने, उनमें ये काल ने अपने हिसाब से निराकार अल्लाह ने अपने लेवल का ज्ञान उनमें जमा कर दिया। और जब परमेश्वर आते हैं या अपना सत संदेश वाहक अपना दूत भेजते हैं, रसूल भेजते हैं, फिर उसकी कोई सुनता नहीं, इस करके ये काल बिगाड़ जाता सारी कहानी को। तो यहां जहां तक पूर्ण परमात्मा के आदेश हैं वो बिल्कुल सही है। और इसमें ये लिखा हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 खूब पढ़कर देखना, उसमें स्पष्ट लिखा कि वो परमात्मा कबीर है और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन वहां पर विश्राम किया। सीधी सी बात, दूसरी बात ही नहीं। और उसकी खबर अल्लाह नहीं बता रहा कि मैं बता दूं उसको कैसे मिलेगा, ये निराकार अल्लाह नहीं बोल रहा, वो नहीं बता पा रहा कि मैं बता दूंगा, नहीं। ऐसे ही गीता जी में कुरान शरीफ में लिखा है कि उन संतों ने ढूंढ ले उन बाखबर, उसकी खबर, उसको कैसे पाना है, किसी बाखबर यानी पूर्ण संत है जो उसके मार्ग का सही जानकार हो, उसको उससे पूछ ले। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है, ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसमें अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 में बिल्कुल स्पष्ट है, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 4 ये स्पष्ट है सामने, और ये 34, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे हे परमेश्वर। अब ये काल बोल रहा है, निराकार बोल रहा है, अर्जुन को बता रहा है, कृष्ण में प्रवेश करके, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बोल रहा है, वो काल जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं, वो शिव बोल रहा है, वो शिव है, वो काल है, ये मां ब्रह्मा महाशिव रूप में, महा विष्णु रूप में, ब्रह्म लोक में, एक ब्रह्मंड में रहता है। अब स्पष्ट हो गया, अगर भगवान ब्रह्म ने अपनी पूजा के बारे में स्पष्ट किया है कि मेरा अगर तुमने स्मरण करना है, तो 8वें अध्याय के 12 और 13 श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि मेरी पूजा ओम नाम के जापते कर ले। अपनी तो बताई रहा, कोई नू सोचे कि भगवान मेरे लिए बता रहा है, उन संतों ने ढूंढ लिया, नहीं। 8वें अध्याय की 12 और 13 श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि ये ओम नाम का जाप है मेरी पूजा करने का। वो तो अपनी तो बताई दी, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के बारे में उन संतों ने ढूंढ ले जो इसके सतमार्ग के जानने वाले। ये अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 12 और 13 इकट्ठी ही संस्कृत सरलार्थ किया है। ये ओम नाम स्पष्ट लिखा, ये देखिएगा, ये ओम नाम है, ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इस एक अक्षरम, इस एक अक्षर के नाम का उच्चारण करता हुआ श्रवण करो। ए बंदी छोड़, अपना तो बताई रहा कि मेरा तो माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का इस एक अक्षर ओम अक्षर से उदाहर माने उच्चारण श्रवण उच्चारण करता हुआ मुझे श्रवण करो, ये अभ्यास योग मेरा हो गया। कहा ना, जिस भी अभ्यास योग से युक्त होकर जिसका स्मरण करेगा उसी को प्राप्त होगा। मेरा स्मरण तो ओम नाम का है और उस परमात्मा की भक्ति करने उसके आधार पर करो, सीधी सी बात है। ये देखो, सर्व इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके, उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित हुए जो पुरुष ओम, ओम ये द्वारा भी ऐसे लिखा है, बिल्कुल इसमें इसमें कोई अंतर नहीं, ओम इस यहां लिखना था, ये थोड़ा सा अपना गोलमोल कर जाते हैं, माम ब्रह्म, ये लिखना था माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, मुझ भ्रम का इस ओम नाम के एक अक्षर से जो व्याहरण माने उच्चारण करता हुआ, और ये देखो अनुसमरण माने चिंतन करता है, स्मरण करता है और शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मेरी परम गति यानी काल जितनी परम गति दे सकता है उतना लाभ ये दे सकता है। अपनी तो ये बता दिया कि मेरा तो केवल ओम नाम है बस, और इसके आधार पर सेवन करोगे तो मुझे प्राप्त होगी। और फिर लिखा कि उस परमात्मा का भजन करोगे तो वो उसको प्राप्त होगे। अभी इसी आठवें अध्याय के 8, 9 और 10 में और 6 में 7वां स्पष्ट किया है। अब इसमें अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में किया है, उसी अध्याय नंबर 8 के 6 में ये स्पष्ट बताना पड़ेगा। 2-3 श्लोक हैं, ये ध्यान से सुनना। इसे पता चलेगा कि दो भगवानों की नरी नरी व्याख्या भगवान करें, 8वें अध्याय का और ये श्लोक नंबर 6 में। ये 7 हो गया, ये 6 है। कुंती पुत्र, अंत काल में जिस जिस भी भाव को समण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहा है। कहने का भाव यह है कि मेरी जो अंत में समण करता है तो मुझे प्राप्त होगा, और उसका करता हुआ उस परमात्मा का करता तो उसको प्राप्त होगा, जो जिसका अभ्यास कर रहा है उसी को प्राप्त होगा। यहां देखना 7वें में लिखा कि इसलिए अर्जुन तो सब विषयों में मेरा समण कर और युद्ध भी कर, और मुझे अर्पण की हुए मनबुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरा तो भजन करेगा ओम नाम से तो मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में देखो अब हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष है। ये देखो परम देव पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर, उस परम प्रकाश रूप देव परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, यानी उसकी भक्ति करता है तो उसको प्राप्त होगा, मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होगा। ये देखो आगे 9वें में लिखा कि जो सर्वज्ञ, ये कवि, ये कबीर ही समझो, कवि कहो चाहे कबीर कहो उसको, कवि यानी वो कबीर परमात्मा समझो। अब धीरे धीरे आपको सारा ही ज्ञान कराऊंगा और आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर यह शब्द लिखा है परमेश्वर की तरफ इशारा है। जो उस यह माने जो वह कवि माने कबीर कवीम, वो कवि नाम का भगवान है। गरीबदास जी कहते हैं ऋषभ देव के आइया कवि नाम में करतार, वो कबीर परमात्मा, कवि कहो से कबीर कहो, वो ये उसका वास्तविक नाम हो जाता है। यह माने जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत अचिंत स्वरूप, अब देखो सूर्य के संगत सदृश चेतन स्वरूप प्रकाश और विद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद परमेश्वर को सुमन करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भरकटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार सचित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस देव परम पुरुष को ही प्राप्त होता है, मेरा स्मरण करने वाला तो मुझे प्राप्त होता है, और उस तत् देव परम पुरुष, उस देव परम पुरुष पुरुष माने परमात्मा को, ओए होए उस परमात्मा को प्राप्त होगा।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।